This is Suno India Production. You can now listen to all our episodes on our Android and iPhone app. Download it now.
हेलो, मैं हूँ सेजल और आप सुन रहे हैं सुनो इंडिया शो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे चुनिंदा परिवार के बारे में। यह शो क्वीयर बीट के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। चुनिंदा परिवार की संकल्पना मेरे जैसे क्वीयर साथियों में काफ़ी आम है। एक ऐसा परिवार जहाँ खून या शादी के रिश्ते से परे आकर हम एक परिवार चुनते हैं जो एक दूसरे की देखभाल, सहायता और सिर्फ प्यार के रिश्ते से जुड़ा होता है। यह पॉडकास्ट है मुस्कान और उसके चुनिंदा परिवार की कहानी। रात के 8 बज रहे थे और ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रानी कमलावती भोपाल की ओर चल पड़ी। मैं मुस्कान से मिलने भोपाल जा रही हूँ। मुस्कान भोपाल की रहने वाली एक 45 वर्षीय दलित ट्रांसजेंडर महिला है और मैं महज उनकी आधी उम्र की। जाते वक्त कई सवाल मेरे जहन में थे, जैसे घर परिवार क्या होता है, खासकर उनके लिए जिनके परिवार उनके साथ खड़े नहीं होते। मुस्कान से मिलकर मुझे यह भी जानना था कि क्या हम एक परिवार चुन सकते हैं और यदि हाँ तो कैसे। बहरहाल, इतने अनजान चेहरों में भी कुछ मिडिल एज्ड अंकल अपने बच्चों का करियर डिस्कस करने लगे और मैं ये देखकर सोचने लगी कि एक सफर में साथ कितना जरूरी हो जाता है। खैर, अब रात हो रही थी और मैं सोने चली गई। अगले दिन मुस्कान ने मुझे 3 बार कॉल किया, तुम्हें एड्रेस मिला ना, तुम आ रही हो ना, यही कुछ सवाल थे उसके। वो शायद चिंतित थी मेरे लिए कि मैं समय से आऊं। और जब मैं अगले दिन कटारा हिल्स पहुंची तो मुस्कान ऊपर तैयार हो रही थी और कुछ समय बाद वह क्रीम रंग की साड़ी में नीचे आई। बाल उसके जूड़े से बंधे हुए, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी और हाथ में उसके एक ओप्पो का फोन था और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। मुस्कान के आते ही मैंने उसकी कुछ तस्वीरें ली। मुस्कान ने मुझे बताया कि वो अपने भाई के घर से पैंट शर्ट में ही आई थी। यहाँ आकर उसने साड़ी पहनी और मेकअप किया। आपने पहली बार साड़ी कब पहनी थी, मैंने मुस्कान से पूछा। और इस सवाल का जवाब ही काफी हद तक मुस्कान के जीवन की कहानी है।
मैं औरत तो थी, आपको घर वालों का दबाव, शादी का प्रेशर, भाइयों का दबाव, बहन का दबाव, कमेंट सुनना, भाभी अगर मैं किसी लड़के के साथ घंटे 2 घंटे कहीं घूमने चली जाती थी तो मेरे घर वाले बोलते थे इसका इलाज कराओ, ये लड़की जैसा क्यों रहता है। और मैं शुरू से, जब मैं 12-13 साल की उम्र हुई तो 13 साल की उम्र में भाई भौजाई ने घर से निकाल दिया मम्मी पापा को लेकर। कुछ छोटी सी उम्र में अलग रहना पड़ो, मतलब बाजू में ही रहना लेकिन अलग कर दिया। वो एक जिम्मेदारी, खुद की एक जिम्मेदारी, खुद को संभाला। एक तो खुद की जिम्मेदारी ऐसी कि 2 आइडेंटिटी को वो करना, संभाल पाना। और माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ मेरे काम के हाउस में थी, कम काम करती थी, पापा मेरे बिल्डिंग वर्क का काम करते थे, तो उन परिस्थितियों में खुद को संभालना माँ बाप की जिम्मेदारी। लेकिन इस प्रकृति और कुदरत की देन है कि हिम्मत नहीं हारी, माँ बाप को भी संभाला, जीते जी उनको भी खूब किया और शाकुशल ज़िंदगी से वो गए हैं। पर उस बीच में भाई अकेले में रहती थी तो सजना सवरना, पैंट शर्ट पर भी रहती थी तो मैं मेकअप करती थी, पैंट शर्ट पर भी रहती थी, लोग मुझे कमेंट्स करते थे, घर वालों की बहुत प्रताड़ना रही।
मुस्कान और उसके जैसे अन्य ट्रांसजेंडर लोग अपने जन्मजात परिवार के द्वारा बहिष्कृत होने की कहानी साझा करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा की गई एक स्टडी में यह पाया गया कि हमारा सामाजिक ढांचा इस तरह से कमजोर है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के महज 2% लोग ही अपने पारंपरिक परिवारों के साथ रहते हैं।
उस समय भी काफी काम पे जाती थी, काम पे आती थी, बस वो था सुबह 8 बजे जाना, 11-12 बजे आना, घर का काम करना, खाना बनाना, माँ बाप की सेवा करना, शाम को 5 बजे जाती थी, 9 बजे आती थी। वो दिन जो एक था, एक जिम्मेदारी थी उसको निभाती रही, घर में स्वेटर बुनना, बच्चों के कपड़े बुनना, भाई भतीजों के मतलब मेरे भतीजियाँ थी तो उनके लिए स्वेटर बुन लेती थी, तो वो सब काम करती थी मैं। और अकेले में खूब तैयार होती थी, जब मौका लगता था कि कोई नहीं है, माँ नहीं है, घर पे बाप नहीं, तो सज लेती थी, संवर लेती थी, जो पहनता पहनने को मिलता था उस पहन लेती थी। लेकिन घर से नहीं निकली क्योंकि पता ही नहीं था कि मेरे जैसे लोग हो।
इसी दौरान उसका एक लंबे समय से पार्टनर था जिसे वह प्यार से पिंटू कहकर बुलाती थी। पिंटू की आत्महत्या के कारण दुखद मृत्यु हुई, जिसका दुख मुस्कान को आज भी है। एक साथी होने के बावजूद और 30 साल की उम्र में भी उसे एक ट्रांसजेंडर महिला के तौर पर दुनिया के सामने आना सुरक्षित न लगा। पिंटू की मौत को कुछ समय बीत गया, फिर मुस्कान की मुलाकात अमित से हुई, जो एक एनजीओ में आउटरीच वर्कर के रूप में काम करता था। इनका नाम हमने बदला है क्योंकि उनकी सहमति नहीं थी और उन्होंने इस बारे में बात करने से भी मना कर दिया।
असल में क्या है कि जो कमिटीज़ की जो साइट्स होती हैं, जो अपने लिए सम टाइम पार्टनर ढूंढते हैं, फिजिकली या जो भी है, सम टाइम पार्टनर मतलब वो इंजॉयमेंट के लिए या कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए जो पार्टनर ढूंढते हैं, तो वो एक साइट थी न्यू मार्केट में, तो वहाँ पे मैं भी गई थी। मेरा मतलब मुलाकात वहीं हुई थी एक बंदे से मेरी। तो सडनली क्या, मैं अकेली थी और रात में जा रही थी, तो बहुत न्यू मार्केट एक बहुत मतलब भोपाल का मैंने माना हुआ मार्केट है, तो वहाँ पे वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स है GTV करके, तो वहाँ पे एक बंदा मिला मुझे रात में 9:30-10 बजे करीब। मैं वहाँ से टहलते हुए निकली, काफ़ी लोग थे, मतलब काफ़ी LGBT कमेटी के लोग थे जो इंटरेस्टेड थे फॉर सम टाइम या पार्ट टाइम, जो 10-15 मिनट के लिए अपना इन्जॉयमेंट या किसी के साथ बैठना, चाय व नाश्ता, तो बहुत सारे लोग आते थे वहाँ मिलते थे। तो मैं उनसे मिलके और अपना सब वहाँ से निकलने लगी घर के लिए। इनका 9:30-10 बज रहा, चलो बहुत लेट हो रहा है, दूर भी जाना है। तो उसी बीच वो बंदा मेरे पास आया, उसने 2-3 राउंड लगाए मेरे पास, और उसने जब वो 2-3 राउंड लगाए तो वो पहले से कमेटी को बहुत अच्छी तरह जानता और कमेटी के बारे में उसको पूरा नॉलेज था। तो वो जो बंदा था उसने मुझे वो मिला, उससे मेरी जब मीटिंग्स हुई, जब हम मिलने जुलने लगे, नंबर एक्सचेंज हुआ और हमारे बीच में अच्छी दोस्ती बन गई। तो उसने मुझे समझाया कि कमेटी के बंदों को या जो मेल का पार्टनर निभाता उसको क्या कहते हैं, फीमेल का पार्टनर निभाता उसको क्या कहते हैं, कोती पंती गिरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे वो 2 महीने के अंदर अपनी चीज़ें समझाई।
हमारे समाज में अपने क्वियर होने को जान पाने, समझ पाने और फिर उसे जी पाने के लिए अभी भी एक्सेप्टेंस की कमी है। इसके लिए दकियानुसी ख्यालों से निकलकर जागरूकता की जरूरत है, जो मिल पाना अभी भी आसान तो नहीं। यह भाषा और विचार भी सदियों से चली आ रही लैंगिक भूमिका के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन अमित का मुस्कान को इन शब्दों और परिभाषाओं के बारे में बताना मुस्कान के लिए एक नई पहचान लेकर आया। मुस्कान का मानना है कि उस थोड़े से वक्त के लिए अमित ही उसका चुनिंदा परिवार था। अमित ने मुस्कान को अपनी ऑफिस ले जाना शुरू किया और इसी ट्रस्ट के जरिए मुस्कान कई लोगों से मिली। पहले जो मुस्कान अपना मुंह बांधकर ऑफिस जाती थी, अब वही मुस्कान नाखून बड़े करने लगी, नेल पेंट लगाने लगी।
तो फिर मेरा वो रोज जाना शुरू हो गया, मतलब फिर वो मुझे लगा कि कोई जगह है जहां मैं जाके खुद को मतलब फ्री माइंड बैठ सकती हूँ, फ्री माइंड लोगों से बात कर सकती हूँ, मिल सकती हूँ, और अपने जैसे लोगों को देख के खुशी भी होती ना यार। मैं फिर वो डर मेरा धीरे धीरे खत्म हुआ और यहाँ आके मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ, दुनिया में बहुत से लोग हैं मेरे जैसे, चाहे वो पेंट शर्ट पे रहते हों या साड़ी सूट पे रहते हों या विदाउट मेकअप या मेकअप में रहते हों, लेकिन मेरे जैसे बहुत लोग हैं यहाँ पे। तो वहाँ से मेरे को खुद को मैंने बाहर निकाला, खुद को पहचाना और खुद को मैंने जज वहाँ पे किया कि नहीं मैं मतलब वो कहते हैं ना मेल और फीमेल के जो वो था बीच का जो चक्का था, मैं उसमें ही समझ नहीं आ रही, खुद को समझने में बड़ा टाइम लगा कि मैं अस्तित्व की क्या पहचान है, मेरी क्या पहचान है, समझ में नहीं, क्योंकि बहुत वक्त मैंने जीवन को यूं ही गंवाया, बहुत वक्त गंवाया जीवन का, क्योंकि समझ पहले एक तो क्या है कि समझ पारिवारिक जो परिवार ने असल में कहीं पारिवारिक डर, सामाजिक जो दुर्व्यवहार, समाज तो घर ही है, पहला समाज मेरा घर है, तो जो घर से ही हमें जो समझने और ना समझ की जो पहचान मिलती घर से मिलती, आपकी आइडेंटिटी, आपके पेंट शर्ट या आपके कपड़ों पर से लोग आपको जज करते हैं, अगर आपने पेंट शर्ट पहने, छोटे छोटे से बाल हैं और आप लड़के जैसे दिखते हो तो आप एक मेल, लोग जेंडर आपको एक मेल की कैटेगरी में रखता है, अगर बचपन से आपने साड़ी सूट पहना है लड़की की तरह हो और आपका बॉडी भी वैसा ही है तो फिर आपको वो जेंडर के हिसाब से लोग सी और गर्ल और मेल का खेल है वहाँ पर, तो उस तरह से वो जो था पारिवारिक डर बड़ा मुश्किल से मेरे को निकाला, लेकिन वो खुशी और फिर वहाँ से खुद को जाना समझा तो, और वही मैंने फिर मैंने काफ़ी साल अप्लाई भी किया जॉब के लिए और वहीं से मुझे पता चला, तो मैंने मित्र श्रृंगार में आउटरीच वर्कर एज ए फील्ड ऑफिसर का भी काम किया, लड़ झगड़ के लिया, मैंने कहा नहीं मुझे भी काम करना, मैं भी इसका हिस्सा हूँ, तो वहाँ पर जॉब भी किया और वहीं से दोस्ती बनी, वहीं से क्राउड पता चला, वहीं से अपने जैसे लोगों की पहचान हुई, खुद की पहचान हुई और खुद को जाना कि आई एम, मतलब मैं अस्तित्व मेरा असल जिंदगी में मैं क्या हूँ और मुझे किस चीज़ में खुशी मिलती है और मेरी खुशी किस में है, मुझे वहाँ से मिथ्या श्रृंगार से। अगर मैं कहीं निकलती तो मेरा पर डे में मेकअप में थोड़ा सा फाउंडेशन लगाती हूँ, काजल जरूर लगाती हूँ और हल्का सा लिप ग्लॉन लगाती हूँ, जो गाल मतलब चेहरा थोड़ा सा, लिप मेरे थोड़े से हल्के से लाइटली गुलाबी दिखे, वो मैं जरूर करती हूँ चाहे दुनिया भर कुछ भी हो।
खैर, 6 साल मुस्कान जिस शख्स के साथ थी फिर उसे छोड़ दिया कुछ कारणों की वजह से। मुस्कान कहती है रिश्ते पेचीदा होते हैं। कुछ समय बाद मुस्कान सुरैया दादी से मिली। सुरैया दादी मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र में किन्नर एवं ट्रांस कम्युनिटी के गुरु के तौर पर मशहूर हैं। हिजड़ा समुदाय की वरिष्ठ सदस्य अपने सामाजिक और आर्थिक बल के कारण गुरु का पद हासिल करती हैं। समुदाय के नए सदस्य उनके चेले कहलाते हैं, जो अपने गुरु पर उनके जीवन यापन के लिए निर्भर रहते हैं। समाज में एक्सेप्टेंस और सुरक्षा के अभाव में हिजड़ा व किन्नर समुदाय के लिए उनके गुरु का घर ही अपना घर होता है। हालांकि कई बार यह घराने शोषित भी होते हैं और मुस्कान खुशकिस्मत है जो उसे एक प्यार करने वाली गुरु मिली।
हमारा जो गोंडवाना के घर है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ा कस्बा है गोंडवाना, उसके नायक है भोपाल में सुरैया दादी, तो वो उनके चेले के, सुरैया दादी के चेले के नाम पे चेला है, तो वो मेरी गुरु भाई लगती, तो वो जब भी कोई बात होती तो गुरु भाई क्या चल रहा है, गुरु भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, मैं भी बोलती हूँ गुरु भाई बड़ी ज़िंदगी ख़राब चल रही थी, घर नहीं मिल रहा, घर लेने को तैयार हूँ, काम नहीं है कुछ, ही जोड़ों में मेरे को जाना नहीं है, ही जोड़ों का बढ़ाना।
मुस्कान कहती हैं कि सारे हिंदुस्तान में सुरैया दादी का घर ही उसे सबसे ज़्यादा पसंद है। मुस्कान वहाँ पहले 8 दिन रुकने गई, फिर 15 दिन और फिर 2 महीने।
दूसरी बार में जब दूसरी बार गई, फट से सभी लोग बस्ती चले गए, मेरी दादी अकेली थी, दादी ने 2-3 साड़ियाँ निकाली, अच्छी अच्छी साड़ियाँ निकाली, ब्लाउज पेटीकोट निकाली, ब्लाउज सिलवाने डाल दी और बताना मत मंत्री किसी को कि मैंने तेरे को साड़ियाँ दी, उन्हें पसंद कर, उसने 2-3 साड़ियाँ दी मेरे को अच्छी अच्छी और ब्लाउज पेटीकोट दिए, ब्लाउज सिलवाने डाल दिए, पहना करो साड़ी भी अच्छी लगती, बोले बिल्कुल पक्का मराठी हिजड़ा दिस्ते मैंने सुंदर, ऐसे मैं बड़े साड़ी, तो उसमें तब से साड़ी पहनना शुरू कर दे।
लेकिन पैसों की कमी, साथियों से मतभेद होने लगे, ऐसे में मुस्कान का मन कैसे लगता। फिर एक दिवाली ऐसी आई जब मुस्कान सुरैया दादी को छोड़कर भोपाल वापस लौट आई। दादी अभी भी कभी कभार मुस्कान को याद कर लेती हैं।
दादी आज अब नहीं लगाती फोन, खैर मेरे को वो अब उसके ही जगह हो गए हैं, लेकिन बहुत फोन लगा के मराठी में ही गाली थी, कहा वो इतने ही याद तुला आठवन इतने ही मराठी में ही बोलती थी, याद नहीं आती हमारी हैं एक जैसी, एक बार गई तो गई, तो बोले तू होशंगाबाद भोपाल इटारसी भोपाल में दूरी कितनी, तू एक बार पलट के नहीं देखी हैं कि चलो मैं चली जाऊँ 2-4-8 दिन रह जाऊँ।
दादी का घर मुस्कान की राह अभी भी देखता है, शायद इसीलिए कभी नए घर के वीडियोज आज भी मुस्कान के पास आते रहते हैं।
आज भी चली जाऊँ मैं, बैग उठा के जा सकती हूँ, पर वो है कि इटारसी जाओ, इटारसी से ऑटो, तो ऑटो से वो नया जो एरिया है वहाँ से पैदल बहुत चलना पड़ता है, इसलिए एक जन को हिसाब चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना, बैग लेके, इतना भारी बैग लेके, नया घर बनाया, बहुत अच्छा दिखाती, फोटो भेजती बुड्ढी, वीडियो भी बना बना के डालती है, देख घर कितना अच्छा बना लिया, देख दैयारा कितना अच्छा बना लिया, यहाँ टीवी लगा, ये इतनी बड़ी 60 इंच की टीवी, 70 इंच की टीवी, मैंने कहा लगाती रहे, बोलती मेरे को आ जा रही है क्यों पड़ी है, मैंने कहा हाँ आ जाऊँगी जब आना होगा।
मुस्कान अब एक फिल्म में काम कर चुकी हैं। अगर दादी टीवी के अपडेट देती हैं तो मुस्कान अपनी फिल्म स्क्रीनिंग के, थोड़ी कड़वाहट तो थोड़ी मिठास मुस्कान और सुरैया दादी के इस रिश्ते को जीवंत रखती हैं।
स्टेट और सब देखती हूँ, मैं कहीं कहीं जाती हूँ, जितने भी एड इवेंट्स में गई, मैं नैदरलैंड गई वहाँ की फ़ोटो भेजे, मैं हैम केरला गई वहाँ की फोटो भेजे, बेंगलोर गई सबकी फ़ोटो भेज देती हूँ, मैं भी जलाती हूँ, उनका देखो बेटा ही जुड़ो, नहीं तो मैं भी अपनी पहचान बना के बैठूँ, मैं दादी को फोटो भेज देती हूँ, दादी देखो तुम्हारे घर का बच्चा। 2022
में आई फिल्म एक जगह अपनी भी, जिसमें मुस्कान ने रोशनी का किरदार निभाया, इस इंटरव्यू के लिए मुस्कान और मैं भी उसी ऑफिस में बैठे हैं। एक तारा कलेक्टिव एक भोपाल से संचालित प्रोडक्शन हाउस है। मुस्कान कहती है प्रोडक्शन हाउस यह बाहरी दुनिया के लिए है, मेरे लिए तो यही मेरा परिवार है।
धीरे धीरे जब 3 महीने शो भी आ रही, 20-25 दिन हमने रिहर्सल करा, बॉडी रिहर्सल करा, एक्टिंग के ऊपर हमने वर्क किया, जब लोग मिलते गए तो वो इनका कुनबा बढ़ता चला गया, तो अब मेरे अंदर का दर्द जब फुल टाइम गेटअप में रहने लगी, उसमें रहने लगी, तो जब लोग दीदी 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 करके बोलते थे, तो वो एक फिर तो रिंची और महीन जब समझाती थी कि ये सब अपने हैं, और या आप जो चेहरे बांध लेती हो, मेकअप नहीं करती हो, आपके चेहरे पे बाल हैं, या आपको देख के लोग यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, तो आप यहाँ अगर काम कर रही हो, काम रह रही हो, तो ये मत सोचो कि पिक्चर बना रही है, ये आपका परिवार है, तो आप यहाँ अगर रहोगे तो बिल्कुल दिमाग और दिल खोल के रहो, यहाँ आपको कोई जज नहीं करेगा, आप पेंट शर्ट पर भी आओगे तो वही इज्जत मिलेगी, और साड़ी सूट पर रहोगे तो वही इज्जत मिलेगी, यहाँ आप रहोगे तो आपको समझ में आ जाए कि लोग कैसे हैं, तो बाकी ये मेरे परिवार बना, तो यहाँ की कुछ जो लड़कियाँ वो मेरी, ऐसा लगता है कि वो मेरी, हम एक ही माँ के पेट के हैं।
मुस्कान एक तारा पर अपना हक खुलकर जताती हैं।
आज भी इनको नहीं मालूम तक मैं आ रही हूँ, रिंचिन बाहर से ऐसे निकली, वो पुदीना लगा रही थी, वो निकाल लगा के ऐसे बस ये वाला डोर गेट खोला और मेरी चप सैंडल की आवाज़ आई, बोले आए ऐसे में आई, बोले आप, मैंने कहा हाँ, ये लोगों को मालूम नहीं था, तो यहाँ मैं बेधड़क आ सकती हूँ।
एक तारा में मुस्कान की सबसे करीबी दोस्त रिंचिन कहती हैं कि घर एक फिजिकल स्पेस के साथ साथ एक मानसिक और भावनात्मक मूल्य की भी स्पेस है। रिंचिन पेशे से एक लॉयर और फिल्म मेकर हैं। एक जगह अपनी भी, यह फिल्म भी घर के साथ साथ समाज में अपनी जगह तलाशने की कहानी है। फिल्म की स्क्रीनिंग कई बड़े फिल्म फेस्टिवल में हुई और हर बार होटल स्टाफ मुस्कान को मुस्कान ना कहकर किसी और नाम से पुकारता था। दरअसल सरकारी दस्तावेजों में बदलाव होना अभी भी बाकी था, तो मुस्कान फिर जा पहुंची अब्दुल माजिद के पास। अब्दुल भोपाल में कार्यरत एक गे राइट्स एक्टिविस्ट हैं एवं अनमोल समाज सेवी संगठन नामक एनजीओ के साथ काम करते हैं। यह एनजीओ 2014 से LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिए काम करता है। माजिद को मुस्कान माजिद भाई कहकर बुलाती हैं। माजिद भाई ने मुस्कान समेत समुदाय के अन्य लोगों के नए पहचान पत्र और ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाए।
लोगों की जरूरत पड़ती है जहां मुझे समझ पाना, क्योंकि वो दुख न मैं अपनी माँ के साथ शेयर कर सकती, मेरे अंदर जो चल रहा है घट रहा है, कि जाने कितने सवाल अंदर पैदा होते हैं, कितने रोज मरते हो, कितनी बार मैं रोज मरती हूँ, रोज कितने बार मुझ जैसे लोग कई बार दिन में जाने कितनी बार मरते और कितनी बार जीते हैं, क्योंकि खुद से लड़ना अंदर ही अंदर, फिर माँ बाप को क्या समझाऊँ, और फिर आस पड़ोस में ऐसा कोई है भी नहीं मेरे जैसा, यार वो भी तो है, वो भी दबंग से रह रही है, थोड़ी दूर चलूं तो वो भी तो है, ऐसे दो चार लोग हों तो थोड़ी सी बॉन्ड, वो ताकत और हिम्मत मिले, पर वो नहीं था। तो मजबूरन हम लोगों को ये परिवार चुनना पड़ता है, और वो चुनना मतलब वो नहीं, वही असल परिवार है मेरे। मैं कहूँ तो एलजीबीटी कम्युनिटी का जो परिवार है वही मेरा असल परिवार है, क्योंकि वो मेरे जज्बातों की कदर करता है, चाहे वो गाली दे, वो मेरी भावनाओं की कदर करता है, मेरे अंदर जो तकलीफ है वो दर्द है, क्योंकि उससे वो भी गुजरा है और गुजरते हैं, सभी गुजरते हैं। आए दिन लोगों के चेहरे पे दिखता नहीं, लेकिन गुजरना पड़ता है और आए दिन गुजरते हैं। तो वो मजबूरन हमें उस परिवार की तरफ मोड़ना, और वही असल, शायद वही हमारा सही परिवार है मेरे जैसे ट्रांस के लिए। माँ बाप तो है, उनका शुक्र है, उनकी उनका एहसान, तो शायद हम इस जन्म में क्या किसी जन्म में किस कोई भी बच्चा एलजीबीटी में कम्युनिटी का कोई भी बच्चा हो, ट्रांस हो या किन्नर समुदाय से हो, कोई भी औलाद अपने माँ बाप का कर्ज जिंदगी में नहीं उतार सकती, चाहे वो कितने जन्म ले ले, क्योंकि आज अगर हो उन्हीं की पहचान हो, जो भी हो, आज उन्होंने आपको जन्मा, आज जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, उन्हीं की देन है। हाँ, पर असल परिवार मेरा वही है जो मुझे मेरे जज्बातों, मेरी फीलिंग और मेरी भावनाओं से, मेरे कपड़ों से नहीं, मेरी अंदर के दर्द से मुझे जज करते, तो वही असल परिवार होता है।
रिंचिन के द्वारा मुस्कान को संवैधानिक मूल्यों की पैरवी करने वाली फेलोशिप मिली, और भी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए वे मुस्कान को बढ़ावा देती रहती हैं।
घर से नहीं निकली, क्योंकि पता ही नहीं था कि मेरे जैसे लोग और भी, काफी साल 35 साल जिंदगी के मैंने गंवाए हैं। अगर शायद उस समय कोई, जो लोग कहते हैं कि आपका चुना हुआ परिवार आपको बहुत बहुत अच्छा लगता, तो वो अगर चुना हुआ परिवार उस समय मिला होता 20-22 साल की उम्र में, 15-16 साल की उम्र में, तो शायद आज मेरा कहती कि मैं कि आज कोई कहीं ना किसी ओहदे या किसी मुकाम पर बैठी होती।
इस खुशी और सफलता के बीच भी मुस्कान को पिंटू की कमी हमेशा खलती है। पिंटू जो मुस्कान के पार्टनर थे और पेशे से बैनर लगाने का काम करते थे,
तो ग्रुप उनको देख के मैं बहुत खुश हुई होती थी, लेकिन डरती थी, देखती थी दूर से बैठ के, लेकिन उनसे कभी हाय हेलो नहीं करती थी। पर वो अवेयर थे उस समय, वो समझ थी उनको अपना जीवन जीने की, पर मैं उनको दूर से देखती थी, वो मुझे चिढ़ाते थे। मैं कभी पार्क में आए, हाय नए नए लोग आ रहे हैं पार्क में, भाई नई नई जन, मतलब वो नई नई कोतियाँ घूमने लगी, कहाँ से आ रहा है नया नया माना आजकल, वो कमेंट्स करते थे, मैं वो कमेंट्स करके आड़ा फिर चम्मू बना के और भाग जाती थी और बैठ जाती थी जाके। वो जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था, मेरी लाइफ कहीं से शुरू हो रही थी और कहीं शायद शुरू हो रही थी, बहुत अच्छी तरफ जा रही थी। वो मेरे आए लेने आए, मैं जैसे ही वो बाइक से आए तो मैं थोड़ा घर से निकल चुकी थी, और मैं अपना 11:30 बजे निकली, और बीच में देख के उसको देख के खुशी और घबराहट के मारे मैंने आँख बंद करके बीच रोड पर ऐसे बैठ गई। वो सामने सडनली मेरे सामने आया, तो मैं खुशी के मारे बैठ गई, एकदम नीचे बैठ गई। तो वो आके गाड़ी रोकी, बोले मुन्ना उतर, बोले ये क्या हो गया तुम्हें? और बहुत अच्छा प्यार था मेरा, बहुत अच्छा। उसने मुझे दिल्ली, बम्बई, देहरादून सब जगह ले गया, पर इज्जत भी दी, प्यार भी दिया। हाँ,
मुस्कान सोचती है कि प्यार ना जाने क्यों हमेशा अधूरा ही मिल पाता है। मुस्कान ने पिंटू को 2008 में हमेशा के लिए खो दिया, उन्होंने आत्महत्या कर अपनी जान ले ली थी। उस दिन जब मुस्कान ने पिंटू को 3 बार कॉल किया तो पिंटू ने कहा वो उनसे कल मिल लेंगे, और कल फिर आया ही नहीं। पिंटू की एक इच्छा मुस्कान को पूरी ना कर पाने का मलाल अब भी है, और उनकी इच्छा यह थी कि मुस्कान उनके लिए एक बार दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सजे।
9 साल की लव लाइन रिलेशनशिप थी, प्यार था, 9 साल जिंदगी के कैसे बीते, कब बीते पता ही नहीं चला, लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत कुछ हुआ, पर प्यार था बहुत। वो अब आज भी उनकी याद आती तो अकेले में रो लेती हूँ, छाती फाड़ के, दिल फाड़ के खूब रोती हूँ, लेकिन बस शायद किस्मत को, ऊपर वाले को, प्रकृति को मेरी खुशी मंजूर नहीं थी, वो इस दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। लेकिन पिंटू जैसा प्यार मुझे मेरे माँ बाप भी, वो मेरे माँ था, मेरे बाप भी था, मेरे भाई था, मेरी बहन थी, और एक जो हम एक लड़के में या एक पति में, एक बॉयफ्रेंड में जो सारी क्वालिटीज ढूंढते हैं वो सब थी उसमें।
क्वीयर थेरेपिस्ट प्रार्थना बताती है कि क्वीयर दुख के लिए समाज या साहित्य में कोई नैरेटिव ही नहीं है। शायद मुस्कान ने इन्हीं नैरेटिव्स की कमी के बीच अपने दुख के लिए रूपक खोज लिए हैं या खोज रही हैं। जैसे मुस्कान को रंग बिरंगे शर्ट पहनना पसंद था, पिंक उसका सबसे पसंदीदा रंग, लेकिन पिंटू के गुजरने के 2 साल बाद तक उसने अपने आप को सिर्फ सफेद शर्ट, पैंट और जूतों में रखना बेहतर समझा। प्रार्थना के अनुसार दुख से डील कर पाना क्वीयर साथियों के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज ही नहीं है। मुख्य धारा में इसी एब्सेंस से भाषा और परिभाषा का अंत हो जाता है। मुस्कान आज भी लाल साड़ी नहीं पहनती। वो कहती हैं कि अगर पिंटू जिंदा होते तो जरूर पहनती, और वो पिंटू को याद करके आज भी एक प्यार का नगमा सुनती हैं, जिसे वे पहले साथ सुना करते थे।
जब भी मुस्कान की स्टोरी लोगों के सामने जाए या मुस्कान को सुने या मुस्कान को पढ़े, तो उनको उनके अंदर का खुद के अंदर मुस्कान को कम दर्द महसूस कर, ये चाहती हूँ कि उसके मुस्कान को महसूस करके उस कहानी को, स्टोरी को पढ़ें।
यह थी मुस्कान और उसके चुनिंदा परिवार की कहानी, या यूं कहें कि उसके घर की तलाश की कहानी।
घर वाकई वैसा हो जैसी मेरी सोच हो, जैसी मेरी चाहत, मेरे चाहे मैं माँ बाप के साथ रहूं, चाहे मैं किसी के साथ भी रहूं, और वाकई घर वैसा होना चाहिए जहाँ मेरे पेरेंट्स भी हों और मेरी खुशियाँ भी हों। मेरा मतलब जो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़े ना बाहर का अपना नया परिवार चुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, अगर वो जो मेरा ओरिजिनल परिवार वो मुझे समझ पाए बचपन से।
मेरी अपनी तलाश, जिसे मैं घर कह सकूं, मुझे मुस्कान तक खींच लाई। मुस्कान ही कहती है ना कि अपने जैसे लोगों को देखकर लगता है कि यही मेरा घर है। Thank you.